नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की सफल जापान यात्रा के बाद आज चीन के लिए रवाना हो गए हैं। चीन में श्री मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दोपहर बाद तियानजिन पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कल से शुरू होकर दो दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रेक्षक देशों और साझेदार संगठनों के नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी संपर्क, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस मंच पर भारत की सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीय संवाद को सशक्त बनाने और साझा विकास की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन।
इससे पहले जापान यात्रा के पहले दिन 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गवर्नर्स को भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद श्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा शिकानसेन बुलेट ट्रेन से मियागी प्रांत के शेंडाई पहुंचे। उन्होंने सेमीकंडक्टर उत्पादन के एक प्रमुख निर्माता टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा किया। कल वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी और श्री इशिबा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को पश्मीना शॉल, चांदी के चॉपस्टिक और पत्थर के बाउल उपहार में दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व और प्रगति की शर्त भी है। आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मत है कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। जम्मू और कश्मीर में पिछले 12 घंटों के दौरान जम्मू संभाग के रामबन और रियासी जिलों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। जम्मू संभाग में रेल यातायात आज लगातार 5वें दिन पूरी तरह बंद रहा और अगले कुछ दिनों तक बाधित रहेगा। उधमपुर रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार 5वें दिन वाहनों के आवागमन के लिए बंद है। उधर पंजाब में पहाड़ी इलाकों में हो रहे पानी के तेज बहाव से राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रावी नदी में अब तक 14.11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ चुका है। राज्य में घग्गर नदी उफान पर है, राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस संबंध में एक समिति का गठन किया। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अलग अलग स्थानों पर तथा कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में GDP में 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल GDP में 8.8% की वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे एशिया कप में भाग लेने के लिए आज चीन के हुआंगजू रवाना होगी। कप्तान सलीमा चेटे के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने महिला हॉकी एशिया कप 2004 और 2017 में 2 बार जीता है। अनिरुद्ध चंद्रशेखर, विजय प्रशांत अमरीकी ओपन टेनिस के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने अमरीका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को पराजित किया। दूसरे दौर में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ और ब्राजील के फर्नांडो रोम्बोली से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।